ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிமா பிரசன்ட் பாய் சுவாமி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
யம் ரம்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்வந்தி திவ்யேஸ்தவே வேதைஷாங்க பத க்ரமோபநிஷதே காயந்தி யம சாமக த்யானாவஸ்தி தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஷாந்தன்ன விதுசுராசுரகணா தேவாய தஸ்மே நமஹ. நாராயணம் நமஸ்கிருதம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீ சரஸ்வதி வ்யாஸம் ததோ ஜயமுதீரே. இந்திரியாணாம் அதிஷ்டாத்ரீ பூதானாம் சாகிலேஷு யா பூதேஷு சததம் தஸ்யை வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நமஹ. வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நமஹ. ஓம் பத்ரம் நோ அபி வாதய மனஹ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. பிரபு மேரே தில் மே சதா யாத் ஆனா 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 தயா கர்கே தர்சன் தும்ஹாரா திலானா தயா கர்கே தர்சன் தும்ஹாரா திலானா பிரபு மேரே தில் மே சதா யாத் ஆனா பிரபு மேரே தில் மே சதா யாத் ஆனா தயா கர்கே தர்சன் தும்ஹாரா திலானா தயா கர்கே தர்சன் தும்ஹாரா திலானா சதா ஜானே கர் தாஸ் அப்னே சரண கா சதா ஜானே கர் தாஸ் அப்னே சரண கா मुझे दीन बंधु न दिल से भुलाना मुझे दीन बंधु न दिल से भुलाना प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना दया करके दर्शन தும்ஹாரா திலானா தயா கர்கே தர்சன் தும்ஹாரா திலானா சபி தோஷ ஜன்மோ கே மேரே ஹஜாரோ சபி தோஷ ஜன்மோ கே மேரே ஹஜாரோ க்ஷமா கர்கே அப்னே சரண மே லகானா क्षमा करके अपने चरण में लगाना क्षमा करके अपने चरण में लगाना क्षमा करके अपने चरण में लगाना प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना प्रभु मेरे दिल में सदा आना प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना किया काम कोई न तेरी खुशी का किया काम हम कोई नहीं, खुशी का किया काम कोई न, तेरी खुशी का किया काम कोई न, तेरी खुशी का अपना बिरद दे के मुझको निभाना, अपना बिरद दे के मुझको निभाना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में ना, फसाया है माया के चक्कर में गहरा, फसाया माया के चक्कर में गहरा, फसाया है माया के चक्कर में गहरा, फसाया है माया के चक्कर में गहरा, वो ब्रह्मानंद बंधन से मुझको छुड़ाना, 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 प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, दया करके दर्शन तुम्हारा दिलाना, दया करके दर्शन तुम्हारा दिलाना, बोलो शंकर भगवान की। सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुण गण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ प्रातःकाल किस पावन बेला में बैठकर भगवान आशुतोष चंद्र मौल्य चंद्र चूड़ चंद्रनाथ सदा शिव का सदैव भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र पर विचार कर रहे थे। भगवान का ये पंचाक्षर मंत्र जो बहुत छोटा है, 5 ही अक्षर है, मंत्रों के अक्षरों को लेकर भी बहुत बड़ा एक विवाद करते हैं, ये षडाक्षर है, ये पंचाक्षर है, ये नवाक्षर है, ये द्वादशाक्षर है, ये षोडशाक्षर है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि मंत्र में अक्षर कितने हैं, प्रश्न इस बात का है कि ये मंत्र किस ग्रंथ का है, वैदिक है अथवा पौराणिक है, और उसके साथ बहुत से मंत्र होते हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सिद्ध मंत्र होते हैं, जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु भगवान के अनेकानेक नाम हैं। कुछ नाम ऐसे हैं कि जो नाम स्वतः सिद्ध नाम है, जैसे शिव, नारायण, राम, कृष्ण आदि आदि। इन नामों से भगवान का स्मरण करना और कोई भक्त भाव से भगवान का नया नाम भी रख देता है तो प्रश्न भाव का है। भाव से भगवान के भक्त अनेक नाम कर देते हैं। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार एक माँ सत्संग में गई हुई थी और सत्संग सुना। प्राय नियम होता है कि सत्संग के कथा के आरंभ में विश्राम में भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं, बोले ये परंपरा इसलिए है कि जो पहले नाम लेते हैं उससे सारे अमंगल अरिष्ट आदि विघ्न जो हमारे शरीर में कथा में श्रेयांसी बहुविघ्नानी अर्थात कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ तो वहाँ हमारे पाप विघ्न बनकर आते हैं। उन पापों के समानार्थ उन विघ्नों के निवारणार्थ भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाता है तो दूर हो जाते हैं। और अंत में इसलिए लिया जाता है कि बीच में जो भगवान के नाम स्मरण करने में जो आपकी महिमा गाने में कोई वाणी लड़खड़ा गई हो कोई शब्द ऐसा प्रयोग हो गया हो जो अनुचित हो किसी प्रकार का भी कोई मानसिक दोषादि पाप हो गया हो तो सर्व पाप प्रणाशनम सारे पापों के निवारण के लिए भगवान के नाम का स्मरण कर लिया जाता है। इस प्रकार भगवान के नाम को लेने की एक परंपरा है। तो पंडित जी बड़े प्रेम से अंत में कीर्तन करा रहे थे कंस निषूदन तुम शरणम देवकी नंदन तुम शरणम भगवान का कीर्तन करा रहे थे देवकी नंदन तुम शरणम कंस निषूदन तुम शरणम बड़े प्रेम से कीर्तन करा रहे थे और वो माँ कीर्तन सुन रही थी। तो सुनते सुनते घर गई तो कभी कभी ना जाते जाते कोई अक्षर दिमाग में कोई संकीर्तन कोई धुन कोई वचन ऐसे मस्तिष्क पर छा जाते हैं कि वो आदमी उसी को गुनगुनाता रहता है मनी मन दोहराता रहता है। तो ये माँ भी घर गई रसोई बना रही थी बड़े प्रेम से कंस निधुसूदन तुम शरणम पर दूसरा वाक्य कैसे बोले देवकी नंदन तो उसका पति है पति का नाम है। तो पहले की औरतें अपने पति का नाम लिया नहीं करती थी तो वो माँ मन में सोचने लगी कि मैं देवकी नंदन कैसे कहूँ। तो उसने उसका हल निकाला कि पहले माताएं बच्चे के नाम को लेकर के पति को संबोधित करती थी तो माँ की जो महिला थी उसकी लड़की का नाम था चंपो तो उसने अपना गाना शुरू कर दिया कंस निषूदन तुम शरणम चंपू के पापा तुम शरणम चंपू के पापा तुम। भगवान ने सोचा कि मेरे को कंस निषूदन तो मैंने कई बार सुना पर चंपू के पापा तो ये नया ही मेरे नाम का नामकरण हुआ है इसलिए इस नामकरण को भगवान ने सोचा कि मुझे सार्थक करना होगा नया नाम दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उसके पीछे जो उसका भाव था कुछ नाम ऐसे होते हैं यूं तो समग्र शब्द राशि याद रखना तव च काकिल रस्तुति राम्बिके खिल शब्द ये जितने शब्द हैं शब्द राशि है एक एक शब्द मात्र उस परमेश्वर के गुणानुवाद के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। ये सकल शब्दों की जो शब्द राशि है ये सारे शब्द उन्हीं से प्रकट हुए हैं और उन्हीं की स्तुति करते हैं। तव च काकिल स्तुति रम्बिके ये सब स्तुति करने ये सारे ही शब्द उन्हीं के हैं। इसलिए याद रखना कौन सा शब्द ऐसा है जो परमात्मा से न हो अलग हो। इसलिए इन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनादि काल से बहुत शाश्वत सिद्ध हैं। उन शाश्वत सिद्धाक्षरों में ये अक्षर है ये मंत्र है ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ऐसा कहकर जो भगवान के इस शिवाक्षर मंत्र का जप करते हैं चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षा स्वरूपाय जटाधराय पीनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय यक्षा स्वरूपाय जटाधराय यक्ष के रूप में। केनो उपनिषद में कथा आती है, इंद्रादि देवताओं ने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त किया, देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, इंद्र बहुत प्रसन्न हैं, सभी देवता बड़े प्रसन्न हैं कि हमने असुरों के ऊपर जीत प्राप्त की है, और इस जीत का उन्हें अभिमान हो गया है। परंतु भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों को अभिमान हो जाए, ये प्रभु को कोई स्वीकार नहीं है। भगवान को ये स्वीकार नहीं है कि देवता लोग अभिमान करने लगे, मान करने लगे कि ये युद्ध तो हमने जीता, ये हमारी शक्ति से हमने प्राप्त किया। कहते हैं ना बहुत सारे लोग, ये जो कुछ भी है ना, जो कुछ ये देखो, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, मैंने ऐसा किया, ये सब मेरा अपना पुरुषार्थ है, मेरे पास तो कुछ नहीं था, परंतु मैंने थोड़ा पुरुषार्थ किया और उससे मैंने ये सब तैयार किया, ये सब मैंने बनाया, मेरी ये मेहनत है। और बहुत से लोग कहते हैं ये तो जो कुछ भी आपको देख रहा है, ये तो महाराज मैंने अपनी बुद्धि से उपार्जन किया, प्राप्त किया। बहुत से लोग अपने पुरुषार्थ पर भरोसा कहते हैं, बहुत से लोग अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से कहते हैं। यदि आप ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी है साम्राज्य जो आपने अपने सामने खड़ा किया है, ये मेरे पुरुषार्थ का फल है, मेरी मेहनत का फल है, तो नारायण यदि मेहनत ही करने की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ मजदूर से ज्यादा मेहनत और कौन करता है। मजदूर भी तो बहुत मेहनत करता है, पर उसे मेहनत करने से ही यदि मिलने वाला होता तो मजदूर को मिलता। यदि आप ये कहते हैं कि ये तो मैंने अपनी बुद्धि से ही प्राप्त किया, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बुद्धि में अग्रणीय रहे हैं हमारे हमेशा ब्राह्मण, पर ये ब्राह्मण लोग सारे बुद्धि में तो बहुत आगे हैं, उनको मिल गया होता। याद रखना, यदि ये कहते हैं कि ये मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया, तो आखिर ये पुरुषार्थ करने वाली शक्ति भी बुद्धि भी तो आखिर आपको किसी ने दी है। तो इसलिए याद रखो कि ये सब जो कुछ भी आपको मिला है, प्राप्त है, न तो ये आपके पुरुषार्थ से मिला, न आपको ये आपकी बुद्धि से मिला, अर्थात ये तो भगवान की कृपा से, अर्थात उन्होंने ही, जिन पर पूर्वजों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, उन्हीं को प्राप्त होता है नारायण। इसलिए ये समझना कि बस ये मैंने, देवता लोग सोचने लगे ये हमारी मेहनत से हमने जीत प्राप्त की। जीवन में सफलता, जीवन में सफलता सभी प्राप्त करना चाहते हैं, पर मिलती उन्हीं को है जिन पर भगवान की कृपा होती है। इस सफलता पर देवता लोग अपनी जीत समझने लगे, उन्हें अभिमान हो गया। भगवान ने सोचा कि इनका ये अभिमान दूर करना चाहिए, उनके समक्ष एक यक्ष के रूप में, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, यक्ष के रूप में प्रकट हुए भगवान, और वो कोई और नहीं थे, वो तो सदाशिव ही थे। यक्ष रूपधारी भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और यक्ष को देखकर उनका पता लगाने के लिए कि आखिर ये है कौन, देवराज इंद्र ने सोचा कि किसी को भेजना चाहिए। सबसे पहले वायु को भेजा, कहा कि जाकर पता करो ये कौन है। जैसे यक्ष के पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं, यक्ष देव बोले कि मैं तुम्हें ये बताऊं, अपना परिचय तुम्हें दूं, उससे पहले मैं तुमसे तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूं। तुम बताओ कि तुम कौन हो। वायु ने कहा मैं मात्र श्रवा वायु हूं। अच्छा तो तुम्हारा काम क्या है? आप जानना चाहते हैं मेरा काम, मेरा प्रभाव, मेरा बल? मैं चाहूं तो सारी सृष्टि को, सकल सृष्टि को तिनके के समान उड़ा करके समाप्त कर सकता हूं, इतनी मेरी ताकत है। तो यक्षदेव ने थोड़ा सा एक तिनका रखा, कहा कि आप इसे उड़ाइए। वायुदेव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, परंतु वो तिनका हिला तक नहीं और वायुदेव मौन हो गए। जब वायु लौट करके नहीं आए तो अग्नि ने कहा कि जाकर मैं पता लेकर आता हूं। जब अग्निदेव पहुंचे, उनसे वही प्रश्न था कि आप कौन हैं? यक्ष ने कहा कि पहले आप उत्तर दीजिए कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं जाति वेधा अग्नि हूं। आपका काम क्या है? मेरा काम, मैं आपको बताऊं मेरे में कितनी ताकत है। मैं चाहूं तो सारी सृष्टि को दग्ध कर सकता हूं, जलाकर नष्ट कर सकता हूं क्षण में। यक्षदेव ने वही तिनका रखा और कहा कि इसे जलाइए। वायुदेव ने पूरी ताकत लगाई, परंतु वो तिनका नहीं जला। और इस प्रकार जब वायु भी नहीं लौटे, अग्नि भी नहीं लौटे, इंद्र ने सोचा कि मुझे स्वयं जाकर वहां पता लेकर आना चाहिए। जैसे यक्ष के समक्ष इंद्र गए और इंद्र ने जाकर उनसे पूछना चाहते, इतने में इंद्र को पास आते देखकर यक्ष देव तो अंतर ध्यान हो गए। यक्ष के अंतर ध्यान हो जाने पर ठीक उसी स्थान पर एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम है अम्बा। अम्बा न हेम्बा देवी प्रकट हुई, और जैसे ही माँ भगवती प्रकट हुई और प्रकट होकर यक्ष ने पूछा कि यक्ष ने, इंद्र ने पूछा देवी से कि आप बताएं ये कौन है, ये यक्ष कौन है? तब भगवती ने उन्हें तत्व का उपदेश दिया, यक्ष कौन है उनके विषय में बताया। अर्थात मान हो तो ये कौन बताए कि हमारा पिता कौन है? माँ के अतिरिक्त और कौन जान सकती है, कौन बता सकता है कि हमारा पिता कौन है? ये बात तो पिता की जानकारी तो सिर्फ माँ ही दे सकती है। अर्थात परब्रह्म परमात्मा की बोध कराने वाली तो प्रथम माँ होती है नारायण। इसीलिए माँ शक्ति ने ये संपूर्ण जगत जो परमात्मा की शक्ति में ओतप्रोत है, ये जगत न हो तो जगदीश्वर की पहचान कैसे हो? यदि ये प्रकृति न हो तो पुरुष के विषय में कैसे पता चले? यदि सगुण न हो तो निर्गुण के विषय में कौन समझे? सर्गुण से निर्गुण का पता चलता है, साकार से निराकार का पता चलता है, प्रकृति से पुरुष का पता चलता है। यदि प्रकृति न हो तो पुरुष के विषय में कौन बताए? शक्ति न हो तो शक्तिवान के विषय में कैसे पता चले? जिसके प्रभाव से, जिसकी ताकत से अग्नि जाति वेदा अग्नि कहला रहे हैं, जिसके ताकत से वायु मातिश्रवा वायु कहला रहे हैं, जिसकी ताकत से इंद्र इंद्र कहला रहे हैं, अर्थात कर्मा अधिष्ठात्र देव है मन का देवता इंद्र, अर्थात इंद्र इंद्र कहला रहे हैं, इंद्रियों के जो देवता हैं, अर्थात हमारी पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, इन इंद्रियां देव स्वरूप हैं और इनके ऊपर शासन करने वाला इंद्र, अर्थात मन, जो जिस मन की ताकत को, जिस मन क्या है इसके विषय में जानकारी कौन देगा? बोले इंद्र को भगवती ने सर्वप्रथम यक्ष स्वरूपी भगवान का बोध कराया, और वो यक्ष के रूप में कोई और नहीं है, वो तो साक्षात भगवान शिव ही है। इसीलिए कहा यक्ष स्वरूपा यजटाधराया पीनाक हस्ता यसनाथनाय। भगवान यक्ष के स्वरूप में, और यही यक्ष स्वरूप में भगवान किसको प्राप्त हुए? धर्मराज युधिष्ठिर को भी प्राप्त हुए थे। महाभारत में बड़ी सुंदर कथा आती है कि पांडवों को बड़ी जोर की प्यास लगी हुई है। भगवान ने बताया कि कुछ दूर में पानी है, प्यास बुझाने के लिए पानी के पास पहुंचे, यक्षदेव वहां बैठे हुए हैं। पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद तुम्हें जल मिलेगा। बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए तुम यदि जल देखो पियोगे, इतनी आतुरता थी, प्यास इतनी जोर की लगी हुई थी कि यक्ष ने कहा सावधान ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो और तब तुम जल पियो। परंतु नकुल को इतनी जोर की प्यास थी कि यक्ष की बात को सुनी अनसुनी कर दी, और जैसे जल अंजलि से लेकर पी लिया तो मूर्छित होकर गिर गए। इसी तरह से नकुल के साथ हुआ, इसी तरह सहदेव के साथ हुआ, भीम के साथ हुआ, अर्जुन के साथ हुआ। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर जब आए, उन्होंने जल जैसे पीने के तैयार हुए, देखा कि चार भाई मेरे मूर्छित पड़े हुए हैं, और उसी तरह से उन्हें भी सावधान किया गया, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। धर्मराज सावधान हो गए। बड़ा सुंदर संकेत है ये जल जगत, ये संसार बड़ी जोर की प्यास लगी है, अर्थात पिपासा है, प्यास है संसार में प्राप्त करने की, संसार में प्राप्त करने की चाह है, पाना चाहते हैं। हर कोई प्यासा है, पिपासु है, अर्थात प्यास है संसार में मुझे मिले, ये एक चाह है। पर जिसको तुम चाह रहे हो पहले उसे पहचानो तो सही, जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो वो आखिर है क्या? यक्ष ने कहा कि पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। चार प्रश्न पूछे थे, जिनमें से पहला प्रश्न था कह सुखी, संसार में सुखी कौन है, ये बताओ कि कह सुखम, सुख क्या है, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है इस संसार में, आश्चर्य क्या है। पहला प्रश्न था ये बताओ कि सुखी कौन है, दूसरा प्रश्न ये था कि आश्चर्य क्या है, तीसरा प्रश्न था किम वर्द बात क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं आखिर बात क्या है। इस प्रकार उन्होंने ये, और चौथा प्रश्न पूछा था कि वास्तव में धन क्या है। इस प्रकार के उनके प्रश्न थे, जिनमें से पहला प्रश्न था कि सुखी कौन है, सुख क्या है। हम सुख समझते हैं, ये महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, सुख वही है, सुखी वही है जिसके ऊपर कोई ऋण न हो। ऋण का अभिप्राय हम यही सोचते हैं कि संसार में जो कर्जदार है, कर्जा किसी से पैसा उधार ले लेना, कोई वस्तु उधार लेना, उसको ही हम एक कर्जा समझते हैं। पर याद रखना हम सबों के ऊपर तीन ऋण है, ऋण